संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। तो संसार परमागम का 172वीं गाथा, जिसको गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय थी, जिसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोल आते हैं, उस पर चर्चा आरंभ करते हैं। ये गाथा आचार्य कुंदकुंद देव को इतनी प्रिय थी कि उनके 5 ग्रंथों में उपलब्ध होती है। समय साल में 49वीं गाथा, 50 इकाय में 46वीं गाथा, नियम सार में 172वीं गाथा। 172वीं गाथा तो ये है रतन सार में, नियम सार में भी ये गाथा है, और अष्टपहर में भी, मोक्ष पहर में ये गाथा है। इस तरह 5 ग्रंथों में कुंद कुंद के ये गाथा उपलब्ध होती है। इससे मालूम पड़ता है कि उन्हें ये गाथा कितनी प्रिय थी। ये गाथा कुंद कुंद ने बनाई है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुंद कुंद के पहले सरखंडागम में भी ये गाथा प्राप्त होती है। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि गाथाएं प्राचीन हुआ करती थी, और आचार्य लोग जो अपने ग्रंथ बनाते थे उनको ऐसा स्थान सेट कर देते थे। उस जमाने में ये नहीं था कि मेरी बनाई गाथा नहीं है, कोई कहेगा तुमने चोरी करके रख ली है। जो बढ़िया चीजें होती थी जैसे नमो काल मंत्र, सभी लोग अपने में ग्रहण कर लेते थे, और कोटेशन देने के लिए भी ऐसा नहीं लिखते थे फला ग्रंथ का पेज नंबर का ये है, बस वैसे ही दे देते थे। इसके संस्कृत भाषा में भी छाया प्राप्त होती है कई ग्रंथों में। इसमें भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है ये बताया गया है। इसमें एक पद है अलिंग ग्रहण, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। वो ऐसा पद है कि जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव के 3 परमागम हैं, पंचाष्टिकाय, प्रचनसार और समयसार। इन तीनों की टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखी, और तीनों ग्रंथों का इस गाथा का अर्थ किया, तो तीनों ग्रंथों में अलग अलग से तरीके से अर्थ किया है। एक ही गाथा के 3 अर्थ हो सकते हैं? अरे दो आचार्य करते तो हम ये कहते कि भाई इनमें मतभेद है, देखो ये ऐसा अर्थ करते हैं, ये ऐसा अर्थ करते हैं, क्यों? आचार्य भी एक बोई के बोई, और ग्रंथ भी अलग अलग, उन्हीं का अर्थ उन्होंने इस ग्रंथ में अलग तरीके से किया और दूसरे ग्रंथ में अलग तरीके से किया। खुद इससे बात सिद्ध होती है कि ये इतने अर्थ जो किए गए हैं उन वो उसमें से निकलते हैं, और उनकी अपेक्षा जुड़ी जुड़ी है, वो सापेक्ष सत्य हैं, वो मतभेद वाले सत्य नहीं है। जैसे कि समय सार में अरस शब्द का अर्थ है कि 6 अर्थ किए हैं, अरस के 6 अर्थ किए हैं। अरूप के 6 अर्थ किए हैं, अगंध के 6 अर्थ किए हैं, अस्पर्श के 6 अर्थ किए हैं, अशब्द के 6 अर्थ किए हैं, जबकि प्रवचन सार में इनके 1 अर्थ किए हैं, और समय सार में अलिंग ग्रहण का 1 अर्थ किया, और प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए। एक एक शब्द के अर्थों में अंतर है। गाथा में यदि हम पढ़ेंगे तो स्पर्श नामक शब्द नहीं है। देखो पढ़ो, अपन देखो, निकालो आप अपने में। अरस्त मरूप मगंधम अवदत्तम चेदना गुण मसदम जान अलंगत गहनम जीवम मनदत्त संस्थानम, तो इसमें स्पर्श नहीं है। अरे कुमार जी देखो अच्छी तरह से हिंदी पढ़ लो नीचे, उसमें जीव को अरस अरूप अगंध अवदत्त चेतना गुण से युक्त अशब्द अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान जानो, इसमें नहीं स्पर्श शब्द तो नहीं है ना मूल गाथा में, लेकिन इन्होंने टीका में उसे जोड़ दिया अमृतचंद ने, जो टीका लिखी इसके नीचे उसमें स्पर्श शब्द भी जोड़ दिया। और जैसे जो इनके भेद किए ना छह छह, ऐसे स्पर्श के भी छह अर्थ कर दिए। घर पर जाके गंभीरता से देखना जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो ख्याल में आएंगी। क्यों किया ऐसा मोटा जी? कि गाथा में जगह नहीं थी तो पद्य में पुराने जमाने में ऐसा होता था, जगह नहीं होती थी। गद्य में तो जगह का कोई सवाल नहीं है, कितनी लंबी लेन हो जाए, और पद्य में तो यदि तीन अक्षर बढ़ जाए तो गाथा भंग हो जाएगी। क्योंकि उसी तारक के तीन चार पांच शब्द और दिए हैं, अरूप अरस अगंध, तो उन्होंने कहा कि पांच इंद्रियों के विषय वाले दिए हैं तो ये भी स्पर्श इंद्रिय का विषय है, तो ये भी जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाए, लेकिन इसमें है ऐसा मान के उनने अर्थ कर दिया। क्या इसको बोलते स्थान संकोच की वजह से, उनका नाम ले दिया करने है ना, तो नाम ले दिया। जैसे कि आपने स्टेज पे पांच कुर्सी लगाई, जो पांच अतिथि आपके मुख आने थे, अब एक भी उसी लेवल का आदमी और आ गया तो अब आप क्या करें, कुर्सी तो पांच ही लगी है, वहां व्यवस्था हो नहीं सकती है, तो भले नीचे बैठा देते हैं और फिर लेकिन जब बोलते हैं तो उन पांच के साथ साथ में उसका नाम भी बोलते हैं, उसके गले में भी माला डलवा देते हैं। वो समझ जाता है कि ऊपर जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरी कुर्सी नहीं लगाई गई है। जाते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल, तो इनका ये नियम है कि ऊपर कितनी कुर्सी लग सकती है, उसके बगल में आप अनलिमिटेड नहीं लगा सकते हैं, पांच लगा सकते हैं या सात लगा सकते हैं, आठ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फटाफट एक आप उठा के नीचे से ऊपर रख दो, बगल में सावरा जी को बैठा दे, ऐसा नहीं कर सकते। आपने निमंत्रण देने जाओ ना तो पूछते हैं स्टेज पर कितनी कुर्सी लगेंगी, बोले पांच के साथ, उसे कौन कौन बैठेगा, उसके नाम मांगते हैं गुरु जी, तो कौन कौन बैठेगा तो कौन कहाँ बैठेगा, कि बीच की कुर्सी पे राज्यपाल साहब बैठेंगे तो उनके इस बगल कौन बैठेगा और इस बगल कौन बैठेगा, तो उसके बगल में कौन, बिल्कुल सब एक एक चीज पहले वो हाथ नक्की करते हैं, ऐसा नहीं बोल पट्टी। इसलिए आप ये समझ लो कि भाई हम पहुंच आ जाएंगे तो बुला लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा मुझे नहीं। तो फिर वहां आप एक करते हैं उनको सम्मान देने के लिए, तो गाथा में तो जगह ही नहीं है, स्टेज पे जगह नहीं है, एक ना एक शब्द को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। पांच इंद्रियों कर्ण है ना, पांच इंद्रियों के विषय हैं, तो पांचों में से एक को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो उनने स्पर्श को छोड़ दिया क्योंकि वो मुख्य था, उसको तो सब लोग मान लेंगे वो तो हो गई, तो अमृतचंदाचार्य ने वो निकाल दिया। और अवदत्त के अलग से छह अर्थ किए, कारण समय सार में और प्रयोजन सार में, देखा कभी बारीकी से, उनने अवदत्त का अर्थ ही स्पर्श किया, देखना स्पर्श का अवदत्त का ही किया और अवदत्त का अलग से दूसरा अर्थ किया ही नहीं, और एक ही आचार्य एक ही गाथा एक ही टीका, लेकिन हम तो इतने बीत राग भावी हैं, जब समय सार पढ़ते हैं तो समय सार पढ़ते जाते हैं, जब प्रवचन सार पढ़ते हैं तो प्रवचन सार पढ़ते जाते हैं, एक दूसरे ग्रंथ को हम भाग मेल नहीं करते हैं। क्यों भूल गए होंगे मधुकरी आचार्य कि हम वहां क्या लिखे आज समय सार में, प्रवचन सार में हमने अव्यक्त का अर्थ किया था स्पर्श, और यहाँ अव्यक्त के अलग अर्थ कर रहे हैं और स्पर्श का अलग अर्थ कर रहे हैं। ये जो 172वीं गाथा है, इस गाथा में और उन गाथाओं की मैं भी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां भी देखें अपन 49वीं गाथा में तो क्या है, वहां से बोलो अभय कुमार जी कहां से शुरू हो रही थी बात, गाथा 39 से बात शुरू हुई थी और 10 गाथाओं में क्या कहा, आत्मा में रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं, यही बात आई कि नहीं, वर्ण नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो जो 20 बोल है ना वो आए हैं कि आत्मा में ये नहीं है, संस्थान नहीं है, वो 10 गाथाओं में ये बातें आई हैं। तो ये नहीं है, इसको उन्होंने वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है ऐसा कहा, और उसी को संक्षेप में रिपीट करके इसमें कह दिया कि वो अरस है, अरूप है, अगंध है, ये निष्कर्ष की गाथा है। वर्णादि का निषेध किया, वर्णादि रागादि मैंने भाव को न्यारा किया, वो वर्ण 6-7 गाथाएं खत्ती हैं समय साल में 39 से लेकर के, उन्होंने सबका निषेध किया और उसी को उलट के रस नहीं है वहां कहा था और यहाँ कहा अरस है, और यहाँ क्या है, यहाँ वर्णन चल रहा है पुद्गल का पूरा भेद विज्ञान का, ये कौन सा अधिकार है, ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, ये महाधिकार ये तत्व प्रज्ञापन है, और ये तत्व प्रज्ञापन में कौन सा अधिकार है, ज्ञान गे विभागाधिकार, कि ज्ञान और गे में हमें भेद डालना है, ज्ञान अलग है और गे अलग है, और ज्ञान गे विभागाधिकार, विभाग अधिकार में क्या समझा रहे, कि शरीर में नहीं हूँ, स्त्री पुत्र मकान जायदाद में नहीं हूँ। तो इसकी पिछली गाथा देखो 171वीं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा प्रतिसार की, जो और आलियो ये देहो देहो बेयुबियो विते जसियो आहार कमयो पोंगल दब्बत गा सब्बे, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तेजस कारमान शरीर, आहारक शरीर, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ये पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। अब कहां पे इतनी स्थूल बात कर रहे और कहां इतनी गहरी गाथा आ गई, यहां तो सीधी शब्द में कह रहा है कि ये शरीर है ये तू नहीं है, मनुष्य प्रिंटों में औदारिक शरीर होता है, देव नारियों में व्यक्तिक शरीर होता है, तो तू औदारिक शरीर वाला नहीं है, तू व्यक्तिक शरीर वाला भी नहीं है, माने तू मनुष्य नहीं है, प्रिंट नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, तो मैं मुनिराज हूंगा कि तुम आहार शरीर वाला नहीं है, तो विग्रह गति वाला होऊंगा क्यों कोमल चंदी, अरे तू तेजस और कारमान शरीर वाला भी नहीं है, जहां वो अकेले दो शरीर रहते हैं ना, माने तू ये शरीर वाला ही नहीं है, क्यों, क्योंकि शरीर रूप रस गंध स्पर्श वाले है और आत्मा रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, इसका नाम है अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण मसलता। तो ये 5 बोल हुए हैं कौन कौन से, अरूप, अरस, अगंध, स्पर्श और असभ्य, 5 इंद्रियों के विषय है ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना का रस, ज्ञान का गंध, चक्षु का रूप और शब्द का कान का शब्द, तो ये 5 मैं नहीं हूं, ये 5 नहीं हूं, ये क्यों कह रहे क्यों समझ भाई, इसलिए कह रहे कि तेरा जो ज्ञान तेरे पास है ना अभी, वो इंद्री ज्ञान है, इंद्री ज्ञान है माने तू अपने ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से करता है। क्या तू अपने ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से करता है? तो जब हम तेरे को कहते हैं इसे जान, तो तू वो इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान का उपयोग करता है। हम कहते आत्मा को देख, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। हम कहते आत्मा को सुन, तो कान लगा के सुनता है। क्योंकि तेरा ज्ञान इंद्रियाधीन है और तुम अभी तेरी प्रैक्टिस अभी पड़ी है। तू ज्ञान को इंद्रियों के बिना होता है तेरी समझ में ही नहीं आता। शास्त्र पढ़ के थोड़ा ख्याल में भी आ गया है, तो अभी प्रैक्टिस ऐसी पड़ी हुई है कि वो इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा को आत्मा का ज्ञान करना चाहता है। अरे भैया हम क्या करें, हम तो पढ़ भी नहीं सकते, अब तो हम तो सुन भी नहीं सकते, अब हम तो आत्मा का ज्ञान भ्रम कर नहीं सकते। क्यों ख्याल अगले भ्रम में जाना पड़ेगा? अरे भाई तुम्हें तो बड़ी सुविधा हो गई, हम सुन सकते हैं ना, तो हमें आत्मा के ध्यान में ये आवाजें डिस्टर्ब करती हैं। क्यों उपयोग को हमें कान पर से हटाना पड़ता है और तुम्हें तो सुविधा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम देख नहीं सकते हैं, तो आंखें बंद करना पड़ती हैं हमें आत्मा को देखने के लिए, और तुम्हें तो ये सुविधा है कि आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है, बंद ही है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये पांच इंद्रियों के जो विषय हैं जिन्हें तुम पुद्गल कहें, और इन्हें तुम इंद्रियों के माध्यम से जानते हो, तो आत्मा को जानने की बात हो तो उसे इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानना पड़ेगा, जानने में नहीं आएगा वो, क्योंकि उसमें जो इंद्रियां जिनको जानने में निमित्त हैं वे रूप रसगंध स्पर्श शब्द आत्मा में नहीं है। तो अब ये जो पांचों चीजें हैं इसमें तो औदारक आदि शरीर की बात करी है, उसमें वर्णादि की बात करी है, अभी क्या मोटे तौर पे ये पुद्गल हो गया ना, इसका एक नाम क्या हो गया, पुद्गल। तो ये जो पांच शब्द हैं ये आत्मा पुद्गल नहीं है, पुद्गल से जुदा है, पौद्गलिक शरीर से जुदा है, ये हो गया इसका। पौद्गलिक वाणी से जुदा है, पौद्गलिक मन से जुदा है, मन वचन काल से जुदा है। इतनी सी बात बताना, अभी आत्मा को जान समय लिखा ना, दो जान अलंगक ग्रहणम, अलंग ग्रहण जानो, ऐसा अर्थ नहीं करना भगवान जी, आचार्य आदेश दे रहे हैं कि जानो, तुम तो आत्मा को जानो कि कैसा, तो अकेला अलंग ग्रहण थोड़ी है, अरस जानो, अरूप जानो, अगंध जानो, लेकिन जानो, तुझे जानने का आदेश दिया, तुझे आंख फाड़ फाड़ के देखने लग गया, कान लगा के सुनने लग गया। अरे भैया हमने सुनने के लिए नहीं कहा, हमने तेरे से देखने के लिए नहीं कहा, काहे के लिए कहा, जान। और आत्मा को जानने का काम देखकर सुनकर नहीं होता, क्योंकि देखकर सुनकर जिनका ज्ञान होता है वो तो रूप स्कंध वाले पदार्थ पौद्गलिक पदार्थ हैं। तो इससे पुद्गल से भेद विज्ञान की ये बात है। चला एक बोल पांच बोल काय के लिए है, सब अलंग ग्रंथ तो शुरू किया ही नहीं। अरे भाई इस गाथा में अकेला अलंग ग्रंथ थोड़ी है, अरस अरूप अवगत ये भी तो है इस गाथा में क्या नहीं, वो उनका एक एक अर्थ तो किया ही है ना आचार्य ने, तो उन्हें भी तो निपटाना पड़ेगा ना, तो अलंग ग्रंथ के भी करेंगे, रीस भी करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अरस अरूप अगंध स्पर्श और अशब्द, ये पांच विशेषण से क्या कहा कि आत्मा पुद्गल से भिन्न है, क्योंकि ये चीजें पुद्गल की हैं और इंद्रिय ज्ञान से पुद्गल पकड़ में आता है, इससे तेरा ये इंद्रिय ज्ञान नाम का जो ज्ञान है इस आत्मा के जानने के किसी काम का नहीं है। इसको बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, अपने को नहीं जाने का ज्ञान है, ساری دنیا کو جانے ہو اپنے کو نہیں جانے کیوں؟ اپنے بولتے ہیں آپن پوت کمارا ڈولے اور پڑوسی کے پھیرے آتے کہ نہیں آتے؟ پڑوسیوں کے پھیرے کراتا سکتا ہے اپنے پوت کمارا ڈولے ہے نا. ہمارے سو نگر میں ہم رہتے تھے, وہاں ایک پنڈت جی تھے تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور انہیں ہزاروں شادیاں کرا دی تھی. نام نہیں بتاتا ہوں میں کیونکہ کھیت میں جا گیا نا سر, ٹی وی پہ جا گیا تو سنیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے آتما کو اپنا آتما نہیں جانا تو تمہارا کیسا جان دھاری رہی, کیسا جان دھاری رہی. تو وہ اندری گیان میں کیونکہ آتما کو نہیں جانا اس لیے کہا ہے کہ اندری گیان گیان نہیں ہے. وہ گیان نہیں ہے اور کسی کو نہیں جانتا یہ بات نہیں ہے, پودگل کو تو جانتا ہے. میں نے پودگل کے جاننے میں نمت ہے اندریاں, اور اندریوں کے مادھیم سے جو پودگل کو جانے اس گیان کا نام اندری گیان ہے. اور چونکہ وہ آتما کو نہیں جانتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اندری گیان گیان نہیں ہے. بولتے ہیں تو ابھی کیا بات چل رہی, پانچ چیزیں نپٹی, جلدی میں نپٹاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے یہ تو جانا کہ پودگل آتما نہیں ہے, لیکن دھرم درپ آتما نہیں ہے, ادھرم درپ آتما نہیں ہے, آکاش درپ آتما نہیں ہے, کال درپ آتما نہیں ہے. یعنی ہم نے دھوکے سے ان کو آتما سمجھ لیا تو, کیونکہ انہیں اندریوں کے مادھیم سے ہم نہیں جانتے. یہ امورتی ہیں, ان میں روپ رس گند اسپرش نہیں ہے. تو تم نے کہا جس میں روپ رس گند اسپرش نہیں ہو وہ آتما, تو ہم انہیں آتما مان لیں گے. تو اس کے لیے دوسرا شبد کیا چیتنا گنم, کہ وہ چیتنا گن والا ہے. تو اس شبد سے کیا کیا کہ یہ باقی کے دھرم درب ادھرم درب آکاش درب اور کال درب یہ بھی آتما نہیں ہے. کیوں سنگے نا, کیونکہ یہ چیتنا گن سے رہے ہیں. دو بھید وجیان ہو گئے, ایک تو ان چھ سے ارس مروب مگنم اور ایک اس سے چیتنا گن سے. اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جتیش بھائی میرا تم سے بھید وجیان نہیں ہوگا, میں نے ایک جیو کا دوسرے جیو سے نہیں ہوگا, کیونکہ چیتنا گن والے تو تم نہیں ہو اور چیتنا گن والا تو میں نہیں ہوں. تو ہمارا کوئی جیو کے جاننے سے کلیان تھوڑی ہوتا, ہمارا تو آتما کے جاننے سے کلیان ہوتا ہے. اور جیو اور آتما میں کیا فرق ہے تمہاری؟ یہ جیو مائنس پر اکول ٹو آتما, سمجھ جائیں گے. جیو میں سے پر کو نکال دو تو اس کا نام ہے آتما, اور آتما پلس پر جیو اکول ٹو پر آتما اکول ٹو جیو. جب سب جیووں کی بات ہوتی تو اسے جیو بولتے ہیں, جیو تتو جیو تتو بولتے ہیں, اور جب اکیلے اپنی بات ہوتی تو اسے آتما بولتے ہیں. کہ جیو کہنے سے جھگڑا بھی میں آپ سے بھن سدھ نہیں ہوتا ہوں, آتما کہنے سے بھن سدھ ہوتا ہوں. آتما کہا تو میں میرا ہی آتما آتا, اس میں آپ کا آتما اس میں شامل نہیں ہوتا. یہ ہے بالوت پاٹمالاؤں میں لکھا ہے, میں نے کئی دفعہ اپنے ودیارتھیوں کو بتاتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہوگا, ہمارے بھی 500 ودوان ہیں تو بچے بچے کو معلوم ہوگا. کیا انتر ہوا آتما میں اور جیو میں؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے کون چیتنا گن والے سے جیو کی پہچان ہوئی, آتما کی نہیں ہوئی. اور ارس مروف مگندم سے پودگل سے بھن آتما کی بات سدھ ہوئی. تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ اپنا سے چیتنا گن مسدم, تو اپنی چیتنا اس سے پر آتما کی سدھی ہوگی. چیتنا تو ہے لیکن کون سی چیتنا؟ अपनी ज्ञान चेतना, अपने अपन में जो चेतनता है वो मेरा स्वरूप है। तो ये जो शब्द है अरस मरूप मगंधम चेतना गुण मसद्दम और अनिर्दिष्ट संस्थानम, इसका कोई आकार नहीं है। अब ये आकार का क्या चक्कर है? देखो तीन शब्द आते हैं अपने यहां, एक अनाकार, एक निराकार और एक साकार। सुने होंगे ना, निराकार अनाकार और साकार। तो आकार माने तो है कि जीव किसी ना किसी आकार में है, कोई भी पदार्थ कोई ना कोई उसका आकार है, क्योंकि उसमें प्रदेशत्व नाम का गुण है। और प्रदेशत्व नाम के गुण का क्या काम है कि कोई भी पदार्थ किसी ना किसी आकार में अवश्य रहे। अब निराकार और अनाकार में क्या फर्क है कि नास्ति आकारो यस्मिन सा, जिसमें आकार है ही नहीं उसका नाम है अनाकार, और जिसका आकार निकल गया है उसका नाम है निराकार। सिद्ध भगवान है निराकार और भगवान आत्मा है अनाकार और संसारी आत्मा है साकार। जिसमें आकार पहले था संसार अवस्था में, देह के आकार था ना, जब मोक्ष में चला गया तो वो आकार निकल गया तो हो गया निराकार। लेकिन आत्मा में अनादिकाल से पौधवेलिक आकार है ही नहीं उसका नाम है अनाकार। अनाकार तो भगवान आत्मा अनादि से है और निराकार सिद्ध होने पर होता है, और आकार तो उसका है ही क्योंकि उसका प्रदेशत्व नाम का गुण उसमें है मौजूद। तो आत्मा का आकार क्या है? अनिर्दिष्ट संस्थान, कि जिसके आकार के बारे में कहा नहीं जाता कि क्या है आकार, कि मनुष्याकार है, त्रिवंशाकार, देवाकार, नारकी के आकार। अपन बोलते ना कि जिस देह में आत्मा रहता है उस देह के आकार रूप होता है। तो मनुष्याकार तो ठीक है मोटा नहीं, लेकिन मनुष्याकार में भी बहुत भेद है, पुरुषाकार स्त्री के आकार है ना, तो पुरुषों में तो नहीं है, पुरुषों में भी बहुत भेद है। जैसे देखिए कि आप ऐसे बैठे हैं तो आपका आत्मा अभी जो शरीर जिस आकार में है उस आकार में है ना कोमलचंदी। अब आपने ऐसे हाथ किए तो आत्मा का आकार बदला कि नहीं बदला? जैसा शरीर का आकार बदला वैसा आत्मा का भी आकार बदला। दिन में कितनी दफे? अरे सांस लेते हो ना तुम सांस, तो भी आकार बदल जाता है, सीना फूल जाता है, तो उस वक्त आत्मा ऐसे आकार में आ जाता है जरा मोटे मोटे में, और फिर सीना की हवा निकल जाती है तो आत्मा जरा पतले आकार में आ जाता है। सांस, एक एक सांस लेने पर आत्मा का शरीर का आकार बदलता है, तो आत्मा का आकार भी उसके साथ। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि जब वो आत्मा का आकार बदलता नहीं हो, तब बदलता ही रहा तो हम कैसे कहें किस आकार का है? इसलिए बोलते अनिर्दिष्ट संस्थान। हम कहेंगे विपिन भाई ऐसे आकार के हैं कि हाथ से हाथ पकड़े हैं और घुटने पे हाथ लगाए हैं और एक मिनट में आप एकदम बैठ के ऐसे बैठ जाएंगे, तो हम झूठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप जिस आकार में अभी हो वो जब तक हम बोले तब तक गारंटी है कि तुम आकार बदलोगे भी? बदल देते कि नहीं बदल देते? क्या नहीं साहब, हम तो नहीं बदले, हम तो जैसे बैठे थे आए थे ना तब से लेके अभी तक वैसे ही बैठे हैं। अरे तुम सांस ले रहे हो उससे तुम्हारे सब आकार बदल रहा है, फेफड़ों का, अंदर में पेट का, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो कहते हैं कि हमें आकार आप में है कि नहीं है, तो हम एक गारंटी से कह सकते हैं कि नहीं है, अनाकार हो आत्मा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते यदि है तो कौन से आकार है बोलो? तो कहते हैं कह नहीं सकते कौन से आकार में, उसका नाम अनिर्दिष्ट आकार। अनिर्दिष्ट माने जिसका कहना संभव नहीं है। जब बोलते हैं पेट में दर्द है तो कितना जो कह नहीं सकता, बस अनिर्दिष्ट दर्द है। میں بول نہیں سکتا کتنا درد ہے, اپن بولتے کہ نہیں بولتے ڈاکٹر سے. تو ہم کہتے بھیا تم نے میں بول نہیں سکتا ایسا کہہ کے بول دیا کہ کتنا درد ہے, کہہ دیا نا لاتا میں. تو بھگوان آتما کیسا ہے, انردشٹ آکار والا ہے. ایسے ایک ایک ارتھ اس گاتھا میں ان شبدوں کے کیے. اب النگ گرہن کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے 20 ارتھ ہیں. میں نے ان ارتھوں کو ایک ہی دن میں جلدی سے نپٹا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, کیونکہ تھوڑی بہت النگ گرہن کی چرچا ہو جائے نا جو شروع کی ہے تو. اب ایک پرشن ہے کہ بھیا تم الگ گرہن کے آچاری دیو ویاکرن نہیں جانتے تھے کیا؟ سن کند آچاریہ تو ویاکرن کے حساب سے مودی جی نے کیا لکھنا چاہیے تھا ہے بھائی پنڈت یہاں, ویاکرن کے حساب سے الگ گرہن شبد صحیح نہیں ہے. النگ گرہن شبد نہیں, النگ گراہی ایسا لکھنا تھا. کیا مطلب ہے النگ گراہی کا؟ لنگ مانے کوئی چنہ, پہچان کا بولتے ہیں چنہ ہے, یہاں اپن پہچان لیتے ہیں, یہاں لیا جائے اس چوراہے پہ بورڈ لگا ہے, اپن پہچان کا چنہ کرتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ اس کا آتما کا جو گرہن ہے من, وہ کسی چن کے دوارا نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی چن نہیں بتا سکتے ہم کہ جس سے تمہیں بتا دیں اور تم پہچان لینا آتما میں. کیوں؟ تو دیکھو آج پنڈت جی آ رہے ہیں دوپہر کی گاڑی سے, تو آپ لے آنا وپن بھائی, کہ سب میں تو تیار ہوں آپ کی آگے ماننے کو. مکن بھائی آپ کی آگے کبھی ٹالوں گا نہیں, لیکن میں نے کبھی پنڈت جی کو دیکھا نہیں ہے. تو کیا دیکھنا پنڈت جی؟ ڈبے میں ان ایک آدمی جیسا ہو اور کوئی اس جیسا نہیں, وہ سمجھ لینا پنڈت. ٹوپی لگائے ہو, کرتا پہنا ہو, خود ہی بتا دیتے ہیں نا کوئی چن. ایئرپورٹ پہ لے جاتے ہیں, دیکھو لکھ دیا ایک پتیترا وگیان لے کے آ جانا, تمہارے ہاتھ میں پتیترا وگیان دکھے گا تو ہم سمجھ لیں گے جو موکن بھائی آ گیا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو ایسا کوئی چن بتاؤ جس سے ہم آتما کو پہچان لیں. گرہن مانے ہوتا ہے جاننا, گرہن کرنا. تو آتما تو جاننے کے روپ میں ہی گرہن کرتا ہے, اور تو کسی پدارتھ کا گرہن کرتا نہیں ہے, وہ تو جاننے روپ میں گرہن کرتا ہے. تو تم کہتے ہیں آتما کو جانو, آتما کو جانو, آتما کا جانو, تو کوئی چنہ تو بتاؤ جس سے ہم آتما کو جانیں. تو وہ کہتے ہیں کہ گرہن مانے جاننا, تو جانا تو جا سکتا ہے وہ, لیکن کوئی چنگ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دوارا وہ جانا جائے. اس لیے النگ گرہن, لنگ مانے چنگ, چنوں سے جاننے میں آئے ایسا آتما نہیں ہے. کہ ہم تمہیں کوئی چنگ بتا دیں جس سے تم آتما جان لینا, ایسا ہم چنگ تمہیں نہیں بتا دیتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ بنا چنگ کے جاننے میں آئے ایسا ہے. بنا جاننے میں نہیں آئے ایسی بات بھی نہیں ہے, تو چن سے جاننے میں آئے ایسی بات بھی نہیں ہے. تو بنا چن کے جاننے میں آئے, تو لنگ مانے چن, گرہن مانے جاننا, اور آ مانے بنا. تو بھگوان آتما بنا چن کے جاننے میں آنے والا پدارتھ ہے. تو اس کے لیے صحیح شبد کیا ہے؟ النگ گراہی. گراہی مانے ہوتا ہے گرہن کرنے یوگ, جسے گرہن کیا جانا ہے وہ. تو بھگوان آتما کسی چن کے دوارا نہیں, بنا چن کے گرہن کرنے یوگ ہے. یہ لکھنا تھا جی آچاری کو, تو اس کے لیے النگ گراہی لکھنا چاہیے تھا. پر انہوں نے النگ گرہن لکھا ہے, یہ ان نے غلطی کی. گھبرانا نہیں, میں آچاریہ کی غلطی بتانے آپ کو نہیں آیا ہوں, میری اتنی ہمت بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی پریوگ نکلے آج جو ویاکرن سے ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہو, تو ایسے نالائق شبد نہیں تھے اس سے کہ گرو نے ایک غلطی لکھ لی اور میں فٹافٹ سدھار دوں. اس میں سے یہ گرو نے نہیں جانتے ہوں گے گراہی لکھنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا کچھ اور ارتھ ہے, یہ کچھ اور بات کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس میں سے 20 ارتھ نکالے, کیونکہ الگ گراہی کہہ دیتے تو ایک ہی ارتھ نکلتا تھا. تو گرہن کہنے سے 20 ارتھ نکل گئے. کیسے نکل گئے میں کل بتاؤں, کل سے شروع کروں گا, ابھی تو ٹائم ہو گیا خیر میں نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ الگ گراہی نہیں لکھ کر ارنگ گرہن لکھا ہے تو اس کا ارتھ یہ ہے کہ وہ آتما 20 پرکار کی باتیں بتانا چاہتے ہیں, وہ کہ ایسے نہیں جانا جاتا, ایسے نہیں جانا جاتا, ایسے نہیں جانا جاتا, ایسے نہیں جانا جاتا. تو اس لیے انہوں نے کہا 20 ارتھ نکلتے ہیں, اس لیے گرہن لکھا. گراہی لکھ دیتے تو نہیں ہو وہ 20 ارتھ نکلتے, وہ غلطی میں سے وشیشتا نکالی. کیا ایسا ہوتا نا کہ الگ گراہی لکھنے سے وہ وشیش ہو جاتا ہے اور الگ گرہن لکھنے سے وہ سامان ہوتا ہے, ہمیں کمان میں مطلب وہ کسی پہ بھی گھٹت ہوتا ہے وہ وشیش میں. اس پہ میں نے تمہیں جانا, میں نے تم دو ہو گئے نا, اور وہ کیسے جانا جا سکتا ہے یہ سامان, کوئی بھی جانے تو وہ کیسے جانا جا سکتا ہے, تو کیسے کیسے نہیں جانا جا سکتا. تو کہا لنگ مانے اندریاں, اندریوں سے نہیں جانا جا سکتا ہے, لنگ مانے انمان, انمان سے نہیں جانا جا سکتا ہے, لنگ مانے چن, چن سے نہیں جانا جا سکتا ہے. ایسے ایسے 20 ارتھ کریں گے وہ کہ کائے سے نہیں جانا جا سکتا ہے, خیال میں ہے نا. اور وہ سارے ارتھ شبد لنگ کے ارتھ ہوں گے, لنگ مانے اندریاں بھی, لنگ مانے یہ بھی, لنگ مانے یہ بھی, لنگ شبد کے بھی ایسے بات سب میں. تو اس میں سے بھی ارتھ کی سدھی ہوتی ہے, اس ارتھ کی سدھی ہوتی ہے, اس ارتھ کی سدھی ہوتی ہے. اس طریقے سے الگ گرہن کی وہ چرچا کرنے والے ہیں. تو وہ جو بات ان کے دماغ میں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو غلطی کری, غلطی نہیں کی, اس کا کوئی وشیش ارتھ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی وشیش ارتھ ہے. ہم نے چٹھی لکھی کہ مکند بھائی آپ کو ہمارے شہر میں پدھارنا ہے اور ہم کو ڈیٹ لکھو کہ آپ کون سی تاریخ کو آ سکتے ہیں, جس سے ہم کوئی نہ کوئی کام آپ سے کرانا چاہتے ہیں, کہ ادھیکش سے منتری اب جو بھی بنتے ہیں, کیا کیا بنتے ہیں رضی بھائی کو نام میں سے لمبی لمبی معلوم ہے, وشیش اتھی اور وہ جو میں کرتا, تو کوئی نہ کوئی کہ ہم کام آپ سے کرانا چاہتے ہیں, انند بھائی سے ضرور ضرور ہے منظوری دو. صاحب اپن نے نکی کیا نا انند بھائی سے ادھاٹن کرانا, ادھاٹن کرنا کیوں نہیں لکھتے ہو, کہ تم عقل مت لگاؤ, ہم نے جو بولا وہ لکھو. عقل مت لگاؤ تم کیوں, کہ ہم نے یعنی وہ شبد کی ایسی ٹیڑھی ایڑی بھاشا بنائی ہے چھابڑا جی, تو اس کے پیچھے کوئی وشیش ارتھ ہے. ہم بھوگ چکے ہیں ایک دم, ہم نے وہ دھن کمار جی تھے نا سوائی سنگھ چٹنی والے, ابناش جی کہاں ہیں, ان کے پھوپا جی تھے, تو انہیں ہم نے لکھ دیا کہ بھئی ہم آپ کو ادھیکش بنانا چاہتے ہیں, تو اس حساب سے آپ کو نمنتر دے دیا. اور پھر وہ آئے تو ہم نے انہیں ادھیکش نہیں مکھ دے بھی بنا دیا. کیا ہو گیا مطلب ادھیکش نہیں تو مکھ دے دی تو ادھیکش سے اور بڑا ہوتا ہے. ہم نے چھوٹی پوسٹ تھوڑی تھی کیوں, تو بہت ناراض ہوئے ان ادنا جی ہمارے جوان, ان کے پھوپا جی سنگے سماج کے بہت بڑے پرتشت آدمی ہیں. میں نے کہا کہ آپ اتنے ناراض ہو رہے, بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے کو ادھیکش رکھا, تو میں نے ادھیکش ہی فیشن لکھا, وہ جو کپا کے لایا اب وہ میرا بھاشن بیکار ہو گیا, اور جو میں سوچ کے آ رہا ہوں بولنے کی میں بول بھی نہیں سکتا. اب دیکھ دوسرا لگا, آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں, کہ آپ کو بھید وگیانی نہیں ہے کہ مکھ اتھی میں ادھارن کرتا, میں ادھیکش میں جھنڈا روہن کرتا, میں کیا فرق ہے. अपन तो वहां पहुंच जाएंगे और जतीश भाई जैसा कह देंगे साथिया बना दो, वहां साथिया बना देंगे, बस काम खत्म। उन्हें नहीं, जो एक एक शब्द का आप समझते हैं और उसकी कोई ड्यूटी समझते हैं, वो आगे अधिक गद्दी पे बैठते हैं ना तो आपको कंट्रोल नहीं करने देते सभा का। अब आप कहते अब ये बोलेंगे अरे बोलेंगे, तुम्हें जदि भजा ध्यान बैठो और वो कहते मुझे दो प्रोग्राम, प्रोग्राम देख करके फिर वो बोलते क्या सुमन भाई आगे बोलेंगे। तो असली अध्यक्ष होता है ना वो कंट्रोल कर रहा है, मंत्री लोग तो उनके कंट्रोल करते हैं जो अध्यक्ष माने अंगूठा छाप अध्यक्ष होते हैं। तो हमें उस दिन से निकलना कि आपसे कोई बड़ा काम हमें कराना है, क्योंकि जितनों की मंजूरी आएगी उनमें 20 को लिखा है, 5 की मंजूरी आई तो 5 में किसको किस पोस्ट पर बैठाना है उस दिन तक देख लेंगे, और अभी किसी को लिख दें तो 5 ही को पत्र डाल सकते, 20 को नहीं डाल सकते, और 5 ने मना कर दिया तो। और अपने हिंदुस्तान में तो ऐसे महान लोग हैं कि हाँ करके भी नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी सफाई फीकी हो जाएगी कि नहीं, क्यों? अब 20 को हम लिखेंगे तो फिर जो आ जाएगा उसको बैठा देंगे तो ये तो नहीं कहलाएगा कि हमारे को वैसे ही, वो कहते हैं हम तो क्या है, क्या बोलते हो तुम भगवान जी, क्या नाम लेते हो लगे था, क्या बोलते हैं तो हमारा तो स्टेपनी के रूप में यूज किया है, कहते कि नहीं कहते, तो वो स्टेपनी नहीं माने, इसके लिए हमने ये भाषा गढ़ी है, बहुत बुद्धिपूर्वक गढ़ी है, तुम अकल मत लगाओ, हम जो कह रहे हैं वैसे ही लिखो। क्यों यानी मैं क्या अर्थ कर रहा हूं कि उसका कोई विशिष्ट अर्थ है, वो हमने वैसे ही नहीं लिख दी, इतनी भाषा हमारी लोग कुंद कुंद प्राकृत में इतने कमजोर हों कि वे अलिंग ग्रही लिखना चाहिए कि अलिंग ग्रहण इतना नहीं जानते हो, सो बात नहीं है। मैं अभय जी को बताता हूं, अब आप लोग शांति से बैठे रहो 2 मिनट, कि एक शब्द होता है जब उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगती है, विभक्ति नहीं लगती है, तो वो कॉमन होता है, जैसे जानना, टू गो टू नो, फिर हमें उसे जानता है, जानती है, जानेगा, वे जानते हैं, तो हमने कुछ भी विभक्ति लगा दी तो फिर वो सब पे लागू नहीं हो सकता, फिर वो कॉमन नहीं रहेगा, फिर उसके लिए जानता हूं कहोगे तो फिर मैं बिना लगाए ही मैं लग गया, मैं जानता हूं खाज नहीं, तो वो विभक्ति नहीं लगाई, तो ये ग्रहण शब्द है, यहां विभक्ति नहीं लगाई, ग्रहण बस मूल बेहतर जानना, आना जाना, टू गो टू नो, तो ऐसा रखा है कि जिससे आप तुम इस धातु से क्रिया शब्द से तुम चार जैसी क्रिया बना लो, समझिए ना, अलिंग ग्रहण क्या है कि बिना विभक्ति का शब्द है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जोड़ी गई है कि जिससे वो किसी विशिष्ट अर्थ से बन जाए। एक धातु से आप जानते हैं कितने अर्थ बनते हैं, अंदाजा बताऊं थोड़ा, 10 लकार होते हैं, सुनना, एक लकार में दो पद होते हैं, परस्मै पद और आत्मने पद, और एक एक पद में 10-10 लकार होते हैं, तो 20 हो गए, और एक लकार में 9 रूप होते हैं, पता भगवती भक्ता भवन की, तो कितने हो गए, 10-30 और 30-60, तो ये 60 तो तिगंत के बनते हैं, फिर किदंत अलग होता है, सुवंत अलग होता है, ऐसे एक शब्द, एक जो ग्रहण शब्द है ना, इसके 250 अर्थ तो मैं बना सकता हूं, अभी शब्द गम धातु है गच्छ के अर्थ में, तो जाना जानना, गच्छति जाता है, अगच्छति आता है, अवगच्छति जानता है, प्रत्यागच्छति लौटता है, ऐसे 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 अर्थ बदलते जाते हैं। फिर ये तो तिगंत मैंने प्रत्यय बताए, फिर होते हैं उपसर्ग, तो शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो एक एक के हजार हजार शब्द बन जाते हैं एक मूल धातु। تو آپ سمجھے تو 20,000 سے نکالے. انہوں نے کیا کیا, گراہی میں لیفٹ فلٹر لگا دیتے تو بس وہ بند جاتا, اور انہوں نے وہ بول نہیں لگایا, اور گرہن رکھا لگا تو کومن رکھا, تو اس میں 20 عرض کیا 200 عرض بھی نکالے جا سکتے ہیں.